नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चालू करने में सफलता हासिल करने पर देश के परमाणु वैज्ञानिकों की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में तमिलनाडु के कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा यात्रा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ये परमाणु संयंत्र पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है और ब्रीडर रिएक्टर बिजली उत्पादन के अलावा भविष्य के लिए नया ईंधन विकल्प भी है।
भारत ने विज्ञान को हमेशा देश की प्रगति से जोड़कर देखा है। हमारे वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, एनर्जी सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब 56 गीगावाट से अधिक हो गई है। पिछले वर्ष ही इसमें लगभग 6 गीगावाट की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए सौर व पवन ऊर्जा आवश्यक है और इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है। आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 6 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल से हिमाचल आ रही हैं। वे कल शिमला पहुंचेगी और छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में ठहरेंगी। राष्ट्रपति का 29 अप्रैल को अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगी और ऐतिहासिक अटल टनल रोहतांग के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। इसके अलावा 30 अप्रैल को राष्ट्रपति चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इसी दिन राष्ट्रपति आरट्रैक शिमला में भी एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति का 2 मई को शिमला से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और शिमला में 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पालमपुर, मनाली और अटल टनल रोहतांग सहित अन्य स्थानों पर भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 51 नगर निकायों में 17 मई को होने वाले मतदान के लिए 29 और 30 अप्रैल और 2 मई को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। प्रशासन ने इन चुनावों को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इसके अलावा आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। सोलन जिले की 201 पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि कल 27 अप्रैल को सभी पंचायतों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, उसके बारे में चाहे वोटर लिस्ट है, चाहे मतदान केंद्रों का सत्यापन है, स्टाफ की ड्यूटी है और अन्य प्रबंध है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए सभी विभागों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है उसके हिसाब से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मतदाता सूचियां हमारी अधिकतर पंचायतों में तैयार होगी। 201 पंचायतों की हमारी तैयार है। जो पंचायतें पुनर्गठन में शामिल थी उनकी मतदाता सूचियां ड्राफ्ट हमने जारी कर दिया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 बजे। नमस्कार।